निर्गमन अध्याय 7। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ, और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूं, वही तू कहना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा, जिससे वो इसराइलियों को अपने देश से निकल जाने दे। निर्गमन 7:1-2 पद। यहाँ आपको ये बताना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर कहता है, मैं फिरौन के हृदय को कठोर कर दूंगा। फिर कई जगह हम पढ़ेंगे और परमेश्वर ने फिरौन का मन हटीला कर दिया, ताकि फिर कठोर हृदय के कारण परमेश्वर उसका नाश करे। अब क्या ये परमेश्वर का न्याय है कि वो पहले मनुष्य का मन कठोर कर दे और उसका नाश करे? इसलिए यदि हम इब्रानी भाषा नहीं जानते तो हम परमेश्वर और उसके मार्गों को समझने में कठिनाई का सामना करेंगे। क्या परमेश्वर वास्तव में निष्पक्ष है? अब मेरे लिए किसी के मन को कठोर कर देना और तब उसे दंड देना अन्याय है। हमारे पाठ में दो इब्रानी शब्दों का उपयोग किया गया है, पर दोनों का अनुवाद है कठोर। यहां हम देखेंगे फिरौन ने अपना मन कठोर कर लिया, तब यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया। निर्गमन 9:12। यहां इब्रानी के दो भिन्न शब्द काम में लिए गए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पद 3 में जो शब्द है वो है कठोर कर दूंगा, जिसका अर्थ वही है जो हम कठोर से समझते हैं। अतः फिरौन ने अपना मन कठोर कर लिया और परमेश्वर ने उसकी उस मनोस्थिति को बल प्रदान किया। कभी कभी परमेश्वर आपको अपना मार्ग चुनने देता और वो आपको बल प्रदान भी करता है। उसने फिरौन के साथ भी ऐसा ही किया था। फिरौन ने परमेश्वर के विरुद्ध अपना मन कठोर कर लिया था, परमेश्वर ने उसे बल प्रदान किया। तू मेरे विरुद्ध अपना मन कठोर करता है, ठीक है, मैं तुझे ऐसे करने की शक्ति देता हूँ, क्योंकि इसके द्वारा मैं संपूर्ण पृथ्वी पर अपने सामर्थ्य को प्रकट करूंगा। परंतु यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि पहला चुनाव फिरौन का ही था, और उसने चुना कि वो परमेश्वर के विरुद्ध अपने मन को कठोर करे। परमेश्वर ने उसके इस निर्णय को दृढ़ता प्रदान की। ये एक बड़ी त्रासदी है कि परमेश्वर हमारे निर्णय को दृढ़ता प्रदान करे। जब आप परमेश्वर के विरुद्ध अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके अपने मन को कठोर कर लेते हैं और परमेश्वर आपको ऐसी मनोस्थिति में हिम्मत बंधाए, तो ये बहुत बड़ी त्रासदी होती है। परमेश्वर ने फिरौन के साथ ऐसा ही किया था। दूसरी ओर आप सही निर्णय लेते हैं और परमेश्वर आपको बल प्रदान करे, तो वो एक बहुत बड़ी आशीष होती है। तो भी फिरौन तुम्हारी न सुनेगा, और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इसराइली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूंगा। निर्गमन 7:4। अब आप देखें, परमेश्वर अपने पूर्व ज्ञान से बोल रहा है। वो जानता था कि फिरौन क्या करेगा, वो जानता था कि फिरौन क्या निर्णय लेगा। परमेश्वर ने फिरौन की स्थिति को यथावत बनाए रखा। ऐसा इसलिए करना पड़ा कि मूसा के बार बार बोलने पर भी उसने यही कहा, नहीं, तुम नहीं जा सकते, अर्थात इसराइल के संतान मिस्र की गुलामी में ही रहेंगे। आप जाने, संपूर्ण इतिहास में उसे सबसे कठोर और मूर्ख व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसका मन सख्त रहने दिया। इसका मतलब मिस्रियों का विनाश। फिरौन ने न केवल परमेश्वर के प्रति, पर उसके चुने हुए अगुओं और इसराइलियों के प्रति भी अपना हृदय कठोर कर लिया था। परंतु परमेश्वर जानता था कि फिरौन उन्हें जाने नहीं देगा। ये तो परमेश्वर का वो ज्ञान है जो अनंत भविष्य को भी जानता है। उसके लिए आप परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते। इसके लिए आप परमेश्वर में गलती नहीं ढूंढ सकते। परमेश्वर तो अपने अपूर्व ज्ञान से सब कुछ जानता है। पर जब आप अपनी बात पर अड़े रहें, तो फिर परमेश्वर को दोषी न ठहराएं। वो न्यायी परमेश्वर है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। इस प्रकार परमेश्वर अपने भावी ज्ञान के अनुसार कार्य करता है। यदि आपके पास भी ऐसा ज्ञान हो और आप उसका उपयोग अपने लाभ के लिए ना करें तो ये मूर्खता ही होगी। इसमें परमेश्वर का क्या दोष यदि वो पहले से ही जान ले कि क्या होने वाला है। परमेश्वर ने आप में और मुझ में अपना ध्यान लगाया है। ये कैसी मनोहर बात है, इसका क्या अर्थ है? आप विजेता हैं। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। वो जानता है कि उसने आपके लिए क्या योजना बना रखी है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप विजय यात्रा पर हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है। आपको भयभीत नहीं, आनंदित होना है। यहां फिरौन के साथ परमेश्वर जानता था कि वो क्या करेगा। परमेश्वर ने कहा कि वो अपना मन कठोर कर लेगा, वो तेरी बात नहीं सुनेगा, जिससे कि मेरा हाथ उन पर उठे और अपने लोगों को छुड़ा लाए। और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इसराइलियों को उनके बीच से निकालूंगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा अनुसार ही किया। जब मूसा और हारून फिरौन से बात करने लगे, तब मूसा 80 वर्ष का और हारून 83 वर्ष का था। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वो अजगर बन जाए। निर्गमन 7:5-9 पद। इसलिए जब तू फिरौन के सामने खड़े हो और वो कहे मुझे एक आश्चर्य कर्म दिखा, ठीक तभी हारून फिरौन के सामने अपनी लाठी डाल दे और वो एक सांप बन जाएगी। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा अनुसार किया। और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दिया, तब वो अजगर बन गई। तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलवाया और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गई, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। परंतु फिरौन का मन हटीला हो गया और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। निर्गमन 7:10-13 पद। अब मेरे लिए एक रोचक बात यह है कि फिरौन के जादूगर ने मूसा और हारून जैसे चमत्कार दिखाने में सफल हुए। अंधकार की ऐसी शक्तियां हैं जो परमेश्वर के कार्य की ज्यों की त्यों नकल कर सकती है। शैतान नकल करने में माहिर है। वो परमेश्वर के अधिकांश कार्यों की नकल करता है। अंतिम दिनों में मसीह विरोधी का एक प्रमुख चिन्ह होगा कि वो परमेश्वर के लोगों में चिन्ह एवं चमत्कारों का प्रदर्शन की क्षमता दिखाएं। वो चमत्कारी कार्य करने में निपुण होगा। दूसरा कोरिंथियों 11:14 में लिखा है कि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप धारण करता है। वो लोगों को धोखा देने के लिए परमेश्वर के कामों की नकल करने में सक्षम है। अब क्योंकि शैतान परमेश्वर के कार्यों की नकल कर सकता है, तो क्या हम कहें मुझे आश्चर्य कर्मों से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि शैतान आश्चर्य कर्मों की नकल कर सकता है। ध्यान दे कि नकल कभी असली का खंडन नहीं कर सकती, परंतु इसके विपरीत होता है। यदि असली काम सामने ना हो तो नकल की ही नहीं जा सकती। नकल करने का मतलब ही है कि सामने कुछ चीज हो जिसकी नकल की जाए। नकल तभी की जा सकती है जब सामने असल वस्तु हो। इस कारण नकल कभी भी असली को अमान्य नहीं ठहरा सकती, वरन ये असली वस्तु के अस्तित्व को सिद्ध करता है। इसलिए यदि लोग आपसे कहें ठीक है नकली वरदान भी है, हाँ इसमें कोई शक नहीं, परंतु ये परमेश्वर के असली वरदानों को अमान्य नहीं ठहरा सकते। ये तो परमेश्वर के असली वरदानों को सिद्ध करते हैं, परंतु मैं ये कैसे जानूं कि मुझे नकली वरदान मिला है या परमेश्वर से असली वरदान? ठीक है, यदि आप में इस बात की चिंता है तो सबसे पहले आपको परमेश्वर से अपना संबंध ठीक करना होगा और परमेश्वर के प्रति आपकी धारणा को सही होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर के खोज में लगे हैं तब आपको असली और नकली वरदान में अंतर मालूम पड़ सकेगा। यदि आप परमेश्वर की निकटता में बने नहीं रहते, न वो आपके जीवन में बना रहता है, तब असली और नकली में अंतर करना कठिन हो सकता है। क्या आप सोचते हैं कि जब आप अपने पिता से रोटी मांगेंगे तो वो पत्थर देगा? प्रभु, मैं भूखा हूं, मुझे मछली चाहिए। ठीक है, यहां ये बिच्छू है, इसे खाकर देखो। तब ये किस तरह का पिता है? ये मेरा प्रेमी स्वर्गीय पिता नहीं है। चाहे मैं खुले हृदय से उसके पास आऊं और कहूं, हे परमेश्वर, मुझको आपकी आवश्यकता है और मैं अपने जीवन में आपकी भरपूरी चाहता हूं, तब तो ये सोचना निंदनीय होगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में शैतान की नकली अनुभव प्रवेश करने देगा, जबकि मेरा मन निष्ठापूर्वक परमेश्वर के लिए खुला है। वो किस तरह का पिता होगा? इसलिए यीशु ने कहा, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? लूका 11:13। ओह, आपका धन्य प्रेमी पिता आपको असली वस्तु देगा। इसके लिए आपको कभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो असली के अलावा अन्य बातों को आपके जीवन में आने ही नहीं देगा। ये तो हम जानते हैं कि नकल बनावटी वस्तुएं अस्तित्व में हैं। हम ये भी जानते हैं कि अंधकार की शक्तियां हैं, वे भी चमत्कारी कार्य करते हैं, जिन्हें हम ना तो समझ पाते हैं ना ही समझा सकते हैं। उन्होंने भी अपनी लाठियां भूमि पर डाल दी और वे सांप बन गई। ये अंधकार की शक्तियां थी जो शैतान की सहायता से परमेश्वर के कार्य करने में सक्षम थी। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठियां को डाल दिया और वे भी अजगर बन गई, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। परंतु फिरौन का मन और हटीला हो गया और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया और वो इस प्रजा को जाने नहीं देता, इसलिए सबेरे के समय फिरौन के पास जा, वो तो जल की ओर बाहर आएगा। और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उसे भेंट करने के लिए खड़ा रहना और उसे इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे ये कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें, और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। निर्गमन 7:13-16 पद। अब आपको स्मरण होगा कि जब सबसे पहले मूसा फिरौन के पास गया था और कहा था, यहोवा ने मुझे ये बताने के लिए तेरे पास भेजा है कि उसकी प्रजा को जाने दे, फिरौन ने कहा था, यहोवा कौन है, मैं उसे नहीं जानता। अब यहां इस संपूर्ण घटना का अभिप्राय यह है कि फिरौन जान ले कि यहोवा कौन है, इसलिए मूसा ने कहा कि यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूं। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा, और जो मछलियां नील नदी में हैं वे मर जाएगी और नील नदी बासने लगेगी, और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जी ना चाहेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कहे कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियां, नहरें, झीलें और फोकरें, सबके ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में काट और पत्थर दोनों भांति के जल पात्रों में लहू ही लहू हो जाएगा। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा और नदी का सब जल लहू बन गया, और नील नदी में जो मछलियां थी वे मर गई, और नदी से दुर्गंध आने लगी और मिस्री लोग नदी का पानी ना पी सके, और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया, तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की ना मानी। निर्गमन 7:17-22 पद। एक बार फिर हम यहां नकल करने का काम देखते हैं, परंतु वो एक चलावा था। आपको मालूम वे एक प्रकार से गूंगे थे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा मुख अभिनव से फिरौन को क्या लाभ हुआ? वे तो विपत्ति पर और विपत्ति ही बढ़ा रहे हैं। उनका करिश्मा तब मायने रखता जब वे लहू बन गए पानी को फिर से पीने लायक स्वच्छ पानी बना देते। फिरौन को खुश करने से हानि किसकी हुई? फिरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर कर अपने घर चला गया, और सब मिस्री लोग पीने के लिए नील नदी के आसपास खोदने लगे, क्योंकि वे नदी का जल नहीं पी सकते थे। तब यहोवा ने नील नदी को मारा था, तब से 7 दिन हो चुके थे। निर्गमन 7:23-25 पर। इमैनुअल विल्कोवेस्की ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है वर्ल्ड्स इन कोलिजन। इस पुस्तक में वो पानी लहू बन जाने की बात को समझाता है। उसका कहना है कि शुक्र ग्रह के निकट आ जाने के कारण ऐसा हुआ था, परंतु परमेश्वर ने क्या साधन काम में लिया हमें बताया नहीं गया। मैं तो इसे चमत्कार समझकर मान लेता हूं। मुझे परमेश्वर के चमत्कार को स्वीकार कर लेने में कोई परेशानी नहीं है। वो पानी को दाक्रस बना सकता है तो वो अनेक अन्य चमत्कार भी कर सकता है। वो पानी को लहू भी बना सकता है, उसके लिए बड़ी बात नहीं। मुझे अपनी कल्पनाओं द्वारा परमेश्वर की विधियों की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है।